रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इलाम के माईनगर अस्पताल और झापा में भागीरथा न्योपाने अस्पताल का किया उद्घाटन। विकास निर्माण के काम में सहभागी होने का प्रधानमंत्री ने सभी से किया आग्रह। नेपाल चीन को जोड़ने वाले मितेरी पुल के बह जाने से बड़ी तादाद में कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री और अन्य पर्यटकों को हो रही है समस्या। और म्यांमार के एक बौद्ध गुम्बा में हुए हवाई हमले में कम से कम 23 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इलाम में निर्मित माई नगर अस्पताल और झापा में निर्मित भागीरथा न्योपाने बुद्ध शांति अस्पताल का उद्घाटन किया। इलाम की माई नगरपालिका वार्ड नंबर 2 दानाबारी में 10.5 रोपनी यानी करीब 16 कट्ठा क्षेत्रफल में 10,70,00,000 की लागत में निर्मित 15 शैया के माई नगर अस्पताल की सेवा आज से ही शुरू हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने सभी से विकास निर्माण के काम में सहभागी होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकास निर्माण के कामों को किसी को भी अवरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ झापा की बुद्ध शांति गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में 15 कट्ठा क्षेत्रफल में निर्मित भागीरथा न्योपाने बुद्ध शांति अस्पताल का भी आज ही उद्घाटन किया। बता दें कि 6.5 करोड़ की लागत में बने 10 शैया वाले इस अस्पताल में आगामी सावन 1 गते से 24 घंटे इलाज और बर्थिंग सेवा दी जाएगी। आज ही प्रधानमंत्री ओली ने झापा की कनकाई नगरपालिका और इलाम की माई नगरपालिका के अव्यवस्थित वासिंदों, भूमिहीन दलित और सुकुमवासियों को जमीन के रजिस्ट्रेशन पेपर वितरित किए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पोडेल ने त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इमरजेंसी 15 शैया और आधुनिक MRI का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री पोडेल ने कहा कि अस्पताल में बढ़ाई गई इन सेवाओं से नागरिकों को सुपथ और सुलभ सेवा प्राप्त करने में सहजता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में अतिरिक्त सेवा विस्तार और आधुनिकीकरण में मंत्रालय हमेशा सहयोग करेगा। बता दें कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से मिले 20 करोड़ रुपए की लागत में इमरजेंसी ग्रीन एरिया में 15 शैया और आधुनिक MRI की व्यवस्था की गई है। बैतड़ी में आज हुई जीप दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। थनगढ़ी से दारचूला के गन्ना जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक डीलासैनी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के 24 वर्षीय संतोष बहादुर राणा और वहीं के 32 वर्षीय किरण बोहरा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी ने दी। घायलों में से 2 लोगों को इलाज के लिए धनगढ़ी ले जाया गया है। ताप्लेजुंग की फक्तांगलुंग गांवपालिका में बाढ़ में क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत की मरम्मत का काम आज से शुरू हो गया है। गांवपालिका के वार्ड नंबर 6 लेलेप के थाकपा नहर में आई बाढ़ से लघु जलविद्युत के क्षतिग्रस्त होने से 200 परिवार बिजली की सेवा से वंचित थे। साथ ही बाढ़ के कारण यातायात भी अवरुद्ध है। भूस्खलन के कारण अवरुद्ध रहा बैतड़ी के खोडपे और बझांग को जोड़ने वाला जयपृथ्वी राजमार्ग अब सुचारू हो गया है। बैतड़ी के नाचंथी के पास सड़क के ऊपर से आए भूस्खलन के कारण आज सुबह से राजमार्ग अवरुद्ध था। सड़क डिवीजन कार्यालय पाटन के डोजर की मदद से मलबा हटाने के बाद आज दोपहर 3 बजे से सड़क पूरी तरह सुचारू हो गई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। काठमांडू की चंद्रागिरी नगरपालिका के दर्जनों स्थान भूस्खलन के जोखिम में हैं। इस साल की बारिश में चंद्रागिरी वार्ड नंबर 1, 2 और 3 भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं, जबकि बीते साल अश्विन में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन आए वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5 और 9 के कुछ स्थान इस बार भी जोखिम में हैं। इससे पहले जहां भूस्खलन की समस्या नहीं दिखी थी, वैसे भी कई स्थानों में इस बार भूस्खलन आ सकता है और जान माल का नुकसान हो सकता है। ये बात नगरपालिका की व्यवस्थापन शाखा के प्रमुख भद्रा अर्याल ने बताई। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि प्राचीन सनातन धर्म और पूर्वीय सभ्यता नेपाल और भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक और जनस्तरीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति और स्वामी नारायण संस्थान नेपाल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने सत्संग दीक्षा पुस्तक का लोकार्पण भी किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आकर्षक वेतन का प्रलोभन देते हुए अल्बानिया भेज देने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 में रह रहे उदयपुर त्रियुगा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 की 35 वर्षीय विमला दनवार और काठमांडू की नागार्जुन नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में रह रही पोखरा महानगर पालिका 26 की 48 वर्षीय राम कुमार रोका मगर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दनवार ने 4 लोगों से 8 लाख और रोका मगर ने 2 लोगों से 2 लाख रुपए लेकर संपर्क विहीन हो गई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीते बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार किया, ये जानकारी पुलिस ने दी। पर्वतीय पर्यटक व्यवसायियों की छात्र संस्था ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान ने कहा है कि नेपाल चीन के बीच के मितेरी पुल के बह जाने से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री समस्या में हैं। टान के महासचिव सोनाम ग्यालजन शेरपा ने एक बयान जारी कर ये जानकारी साझा की है। अपने बयान में उन्होंने उल्लेख किया है कि मितेरी पुल के बहने से रसुआ गढ़ी सड़क मार्ग से चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले नेपाली विदेशी तीर्थयात्री और अन्य पर्यटक तिब्बत में प्रवेश कर पाने से वंचित हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर गुरुवार देर रात हुए हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। यह हमला लिन तालू गांव के मठ में हुआ, जहां 150 से ज्यादा लोग आसपास के गांवों से शरण लेने आए थे। हमले में 30 लोग घायल हुए, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक जेट लड़ाकू विमान ने रात लगभग 1 बजे गांव के मठ पर बम गिराए। हालांकि यह हमला किसने किया इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सेना ने घटना को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। म्यांमार के स्वतंत्र डेमोक्रेटिक वॉयस ऑफ बर्मा ऑनलाइन मीडिया के मुताबिक मृतकों की संख्या 30 तक हो सकती है। म्यांमार में 2021 से गृहयुद्ध चल रहा है, जो फरवरी 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ। सेना ने चुनी हुई सरकार, जिसका नेतृत्व आंग सान सू की कर रही थी, को हटा दिया। इसके बाद देश में अशांति फैल गई। सन 2020 के चुनावों में एनएलडी की जीत को सेना ने धोखाधड़ी करार दिया, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सेना के हिंसक दमन ने प्रतिरोध को जन्म दिया, जिसमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एनयूजी और उसकी पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ के साथ कई जातीय सशस्त्र संगठन ईओज शामिल हैं। ये गृहयुद्ध म्यांमार में मानवीय संकट लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 17.6 मिलियन लोगों को सहायता की जरूरत है। 3 मिलियन से अधिक विस्थापित हुए हैं और 75,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सेना पर गांवों को जलाने, हवाई हमले करने और युद्ध अपराधों का आरोप है, जिसने रोहिंग्या समुदाय को भी प्रभावित किया है। म्यांमार में गृहयुद्ध से अर्थव्यवस्था 18% कम हो गई, जिससे भुखमरी और गरीबी बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इन दोनों क्षेत्रों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैरिफ लागू होगा। इस कदम की जानकारी उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दी। ट्रंप ने दोनों को ये धमकी भी दी है कि अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं तो टैरिफ रेट और बढ़ा दी जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इलाम के माई नगर अस्पताल और झापामा भागीरथा न्यौपाने अस्पतालका किया उद्घाटन। विकास निर्माण के काम में सहभागी होने का प्रधानमंत्री ने सभी से किया आग्रह। नेपाल चीन को जोड़ने वाले मितेरी पुल के बह जाने से बड़ी तादाद में कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों और अन्य पर्यटकों को हो रही है समस्या। और म्यांमार के एक बौद्ध गुम्बा में हुए हवाई हमले में कम से कम 23 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।